لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين المعصومين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلوات. دعا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بے حیائی، بے غیرتی، کھلم کھلا گناہ، شیم فل اینڈ ان ڈیسنٹ ایکٹیویٹیز. اور آج کی رات شب جمعہ، جو ایک طرح سے شب دعا بھی. اب اس سے پہلے کہ میں قرآن کریم کی ان دو آیتیں، جن میں سے ایک کی تلاوت کل ہو چکی اور جس میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ شیطان کو فالو کرنے کا سب سے بڑا نقصان کیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. جب بار بار ایک میسج دیا جا رہا شیطان سے ڈسٹینس رکھو، کیونکہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ منکر تو کہتے ہی ہر گناہ کو. قرآن نے دو باتیں بتائیں، وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا اور منکر کا. تو منکر تو کہتے ہی ہر گناہ کو ہیں، فحشاء خود اس میں آ گئے. لیکن اہمیت کی وجہ سے قرآن نے پہلے اس کا تذکرہ کیا کہ جو کھلے گناہ، انہیں عام گناہوں کی طرح سے نہ سمجھنا. اب اس کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں ایک طرح سے اس کا علاج یا اس کی ریمیڈی بتائی گئی کہ بھئی آدمی کیسے اپنے آپ کو کھلے گناہ سے بچائے، جبکہ چاروں طرف، جیسے میں نے کل کہا کہ آپ کو نہیں کرنا گناہ، شادی میں تو جانا پڑے گا، روحانیت اسلام میں حرام ہے، ورنہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ جیسا آج دنیا کا ماحول ہے، آدمی سب سے کٹ کر ایسے علاقے میں جا کے رہے، کسی آئی لینڈ پر، کسی پہاڑ پر، کسی جنگل میں، کہ جہاں کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو. کس چیز سے؟ اللہ کی اطاعت سے. آج مسئلہ یہ ہے کہ روکنے والے ہیں کون، ہمیں روک رہا ہے اللہ سے، بیوی، شوہر، والدین، اولاد، دوست، رشتہ دار، بھائی، بھتیجے، بھانجے، جو ہمارے سب سے بڑے مددگار اور ہیلپر ہونا چاہیے تھے. کیونکہ اسلامی معاشرے کے لیے جو اسلام نے فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے وہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اسلامی کمیونٹی، مومنوں کی کمیونٹی، اس کا پلر ہے یہ قرآن کا اصول. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خبردار گناہ کے کام میں قطعاً ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا. البتہ یہاں پہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں. یہ آیت قرآن کی ایسی آیت ہے جس سے مور دین 700 مسائل فقہ ڈرائیو ہوتے ہیں، عکس کیے جاتے ہیں، اور جب کبھی میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں تو وہ سارے مسئلے یا ان میں سے بہت کچھ انٹرسٹنگ مسئلے میرے ذہن میں آتے ہیں. یہ آیت ہمارے مراجع کے پاس بہت اہم آیت، یہ فقہ میں بھی ڈسکس نہیں ہوتی ہے، یہ اصول فقہ میں ڈسکس ہوتی ہے. خیر، تو یہ اسلامی سوسائٹی یا مومنوں کی کمیونٹی کی کیریکٹرسٹک ہے. لیکن ایسا ماحول آج کل یہ دل چاہ رہا چھوڑ دو سب کو اور جنگل میں جا کے بیٹھو، وہاں پھر بھی اللہ کی عبادت ممکن ہے. جن کے درمیان بیٹھ کر جو ہمیں مدد دیں گے عبادت میں، یہ کوئی آج مدد نہیں دیں گے، روکیں گے، मगर क्या करें, वो दूसरा हुक्म आ गया, रूहबानियत हराम है, कम्युनिटी को, सोसाइटी को, माशरे को छोड़ के जाना गुनाह कबीरा, रहना इन्हीं के दरमियान पड़ेगा क्योंकि सिला रहमी भी वाजिब, रहना इन्हीं के दरमियान पड़ेगा क्योंकि वालिदैन का हक भी अदा करना है, चाहे वो कितने ही गुनाहगार, फासिक, फाजिर और हमें भी गुनाह के रास्ते पे प्रमोट करने वाले क्यों ना हो, लेकिन ताल्लुकात को रखना पड़ेगा। और इसी तरह सारी कम्युनिटी। तो अब जब ये माहौल बनता तो आदमी अल्लाह से कहता है कि फिर कोई तो ऐसा तरीका बता के एटलीस्ट हम अपने घर को बचा लें। कुरान ने तीन चार बातें बताई, उनमें से एक बात ये भी मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि हर एक को मालूम, इन सलात तनहा अनिल फहशा वल मुनकर, जिस बेहयाई के काम को कुरान कंडेम करता रहा, फिर सूरह अनकबूत में और एवरी ईयर शब कदर में इस सूरह की आप तिलावत भी करते हैं और आजकल स्क्रीन पे इसका ट्रांसलेशन भी देखते हैं। ये नमाज है जो आदमी को खाली गुनाहों से नहीं रोकती है, ये बेहयाई वाले गुनाहों से रोकती है। और यहां पर एक जुमला मैं अभी कह दूं, इसको शायद मजलिस के आखिर में मुझे ज्यादा थोड़ा सा डिटेल के साथ बयान करना पड़े, और वो ये है कि जो नमाज का बेनिफिट कुरान ने बताया, यही हज का भी बेनिफिट रिवायतों में आया, लेकिन वो हज जो एक दो तीन बातें मुझे बहुत अहम बताना थी हज से रिलेटेड, वो शायद मजलिस के आखिर में आएंगे, अभी नहीं। अब यहां पे एक बात मैं अपनी पहली मजलिस के हवाले से स्टार्ट में ही कह देता हूं। कल भी मैंने कहा था कि मुझे डिस्कस करना है, लेकिन फिर बात बहुत लंबी हो गई, शैतान के पैगंबरों का तस्करा निकल आया तो अल्लाह के पैगंबरों का जिक्र तो रह ही गया। तो आज मैं बिल्कुल शुरू में ये जो एक जुमला मैंने कहा था कि फोर्थ इमाम और इमाम जमाना के हालात में बहुत ही ज्यादा मैचिंग या सिमिलरिटी, तो इस पे तो मेरा पूरा अशरा है जो अभी मैं यहां आने से पहले मस्कत में पढ़ के आया था, चौथे इमाम की शहादत की डेट, तो 10 मजलिसें थी, तो ये पूरा अशरा पढ़ के आया। तो हिस्टोरिकल बातों को छोड़ दीजिए, यानी सिमिलरिटी हिस्टोरिकल बातों में भी, छोटा सा एक इशारा, हर इमाम की मां का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इमाम की मां के वाकयात पढ़ें, और ये बात सही भी कि मासूम ने उसकी डिटेल भी नहीं बताई, लेडीज ऑफ अहलुल बैत के हालात, ये उलमा या मुज्तहिदीन का कोई फॉल्ट नहीं है कि तफसील से हमारे सामने नहीं आते हैं, इमाम खुद भी ये पसंद नहीं करते, लेकिन शॉर्ट 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 एक एक स्टोरी आ जाती, तो वो जितने भी मासूमीन की माएं हैं, ये भी एक चेन है, अशहदु अन्नका कुंत नूरन फिल असलाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा, मौला मैं गवाही देता हूं कि माएं पाक और पाकीजा माएं, वो भी एक चेन है जो ज़ियारत वारिसा में आप जिक्र करते हैं, उनमें जनाब आमिना के हालात बहुत डिटेल से, जनाब खदीजा ताहिरा के हालात तो सबसे ज्यादा डिटेल से, शहजादी फातिमा तो खैर वो तो बात ही अलग हो गई है, तो ये सब मासूमीन की माएं, मगर मैचिंग वाले हालात किसके हैं, या चौथे इमाम की मां है या इमाम जमाना की मां, समटाइम्स तो आदमी ये डिसाइड भी नहीं कर पाता है कि मैं फोर्थ इमाम के मां के हालात पढ़ रहा हूं कि जमाने के इमाम के, अगर वो रिवायत पढ़ी जा रही और बीच में कोई मोमिन मजलिस में आ जाए तो दो तीन मिनट तो उसको लगेंगे ये समझने में कि ये फोर्थ इमाम की मां है कि ये ट्वेल्थ इमाम की मां, इतने सिमिलर हालात, लेकिन वो चीजें छोड़ दीजिए, वो हिस्ट्री, हमें ये देखना है कि प्रैक्टिकल लाइफ, फोर्थ इमाम के जमाने में दुश्मनान अहले बैत ने आले मोहम्मद पे अटैक करने के लिए एक नया तरीका इन्वेंट किया, एक नया तरीका जो इसके बाद बहुत सारे जालिमों ने यही तरीका एडॉप्ट किया। दुश्मनान अहले बैत की जो पॉलिटिक्स है, ऐसा लगता है कि बाद के जालिमों ने उसका बहुत थोरो स्टडी किया, जो मुआविया ने किया, जो मुआविया से पहले वालों ने किया, वो हमें आज की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दोबारा रिपीट होता नजर आ रहा। मगर यहां पे बात को शॉर्ट करने के लिए, अहले बैत पर अटैक, किस तरीके से हुआ? नंबर एक, तलवार के जरिए। तलवार 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 तलवार, अहले बैत की शहादत। अब ये तलवार के जुमले को जरा सा और बड़ा कर दूं, अगरचे टाइम आज नहीं है। तलवार, नैजे, बर्छियां, तीर, पत्थर, जलती हुई आग, ये सारी चीज अहले बैत पे। एक अटैक हुआ जहर के जरिए से, शरबत में जहर, अंगूर में जहर, तलवार में जहर, अहले बैत पर। एक जुल्म हुआ प्रोपेगेंडा, पूरी मशीनरी बनाई गई, मिंबरों से अहले बैत को कंडेम किया जा रहा, नमाजों में अहले बैत को कंडेम किया जा रहा। नमाज के कुनूत में मौला अली का नाम लेकर लानत का फकरा किसने स्टार्ट किया? ये सब तारीख में। मिंबर, मस्जिद, नमाज, बुक्स, स्पीकर और ओरेटर, चौथे इमाम के हालात में है ना कि वो यजीद का जो ऑफिशियल खतीब था वो मिंबर पे जाके क्या 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 कह रहा है वो मसाइब में हम सुनते। ये वो मुख्तलिफ तरीके जो हर एक को मालूम है, और ये जरा अंडरस्टूड भी है। भाई हम किसी की मुखालिफत करेंगे तो क्या, गर्दन काटेंगे, तलवार चलाएंगे, जहर देंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, उसके खिलाफ बुक लिखवाएंगे, उसके खिलाफ सो कॉल्ड उलमा को खरीद के उनसे फतवे इशू कराएंगे। अब ये सारी चीजें अहले बैत के खिलाफ। इमाम अली की जिंदगी में, कोई छठे इमाम की जिंदगी में, कोई आठवें इमाम की जिंदगी में। क्योंकि मैं बात को बहुत ज्यादा फैलाना नहीं चाहता, लंबा नहीं करना चाहता, ये चीजें सब जानते हैं। वरना तो शहजादी कौनैन के पहलू का कोड़ा और घर का जला हुआ दरवाजा और टूटी हुई पसलियां, ये भी इसमें शामिल कर लीजिए एक लिस्ट। मगर चौथे इमाम के जमाने में तरीका बदल दिया। अच्छा, अब इसमें एक बहुत अहम चीज रह गई, जेल या प्रिजन। जेल में अहले बैत को डाला गया, चाहे वो फोर्थ इमाम हो, चाहे वो सेवेंथ इमाम हो, चाहे वो इलेवेंथ इमाम हो, ये पूरी मासूमीन की जिंदगी। मगर चौथे इमाम के जमाने में वो एक साल की जो इमाम की कैद है, इस पर भी आजकल बहुत डिबेट या कंट्रोवर्सी है, एक साल कैद रहे कि दो दिन कैद रहे, विद इन 48 आवर्स, ये भी कहा जा रहा। लेकिन बहरहाल हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं हमारे टॉपिक से हटकर। चौथे इमाम के जमाने में खास तरीका इख्तियार किया गया, जब शाम की जेल का उल्टा नतीजा निकला, यानी वो जेल में इसलिए रखा गया ताकि लोग अहले बैत से दूर हो जाए। वो तो वहां ये हुआ कि खुद यजीद के सेंटर में, यजीद के अपने गढ़ में यजीद के खिलाफ उसके अपने मानने वाले हो गए, तो अब जेल भी खत्म। ये चौथे इमाम की इमामत के बिल्कुल शुरू में। अब क्या तरीका इख्तियार किया गया? अब ये तरीका इख्तियार किया गया कि आखिर, बहुत जल्दी जल्दी ये बात कह रहा हूं वरना मेरे पास बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं और बहुत सारे ऐसे एविडेंस या प्रूफ भी हैं, लेकिन अब वक्त नहीं है, तो इसलिए मैं बिल्कुल जो पंच लाइन, बॉटम लाइन जो नतीजा है उस पर आ रहा हूं कि दुश्मनान अहले बैत ने मीटिंग की। उस अंदाज की मीटिंग नहीं जैसे हमारी आपकी होती है कि नोटिस बोर्ड पे सर्कुलर लगे, एजीएम हो, इतना कोरम हो और इतनी तारीख को और इतना 6 वीक का नोटिस, ये सब नहीं। जमा हुए कि वाय, तलवार चलाई, अहले बैत और पॉपुलर हो गए। लफ्ज मुझे खुद पसंद नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए मैं सिंसियर अपोलॉजी अहले बैत से भी और आपसे भी। और बहरहाल मुझे एक तो ग्रेस दीजिएगा ना कि अंग्रेजी मुझे बिल्कुल नहीं आती, जरा सा अगर लफ्ज गलत इस्तेमाल कर दिया जाए तो इशू बन सकते हैं और बने। जो जानता है वो गलत लफ्ज इस्तेमाल करे तो उसे कंडेम करे, जो हम जैसा जिसको पता ही नहीं हमको जरा माफ कर दिया करे अंग्रेजी लफ्ज में। उर्दू पे मैं आपसे माफी नहीं मांग रहा हूं, मेरी अपनी जबान में लखनऊ वाला हूं। खैर, तो खुलासा यह है कि तलवार चलाई अहले बैत के खिलाफ, ये और पॉपुलर हो गए। इन्हें जेल में डाला, ये और पॉपुलर हो गए। इन्हें जहर दिया गया, पब्लिक और इनकी जानिब डाइवर्ट हो गई। प्रोपेगेंडा किया गया, जो आज सबसे बड़ा तरीका है। आज दुनिया को मालूम है कि किसी कौम को कत्ल करने से काम नहीं चलता, प्रोपेगेंडा करो, अहले बैत और पॉपुलर हो गए। अब क्या किया जाए? क्यों आखिर अहले बैत हर जुल्म के बाद और ज्यादा पॉपुलर क्यों हो जाते हैं? कहा अहले बैत का कैरेक्टर। देखिए, इमाम अली खाली ये नहीं है कि कुरान की इतनी आयतें उनकी शान में आई है तो इतना स्टेटस आई। खुद इमाम अली का अपना कैरेक्टर ऐसा कि जिसको एक आयत भी नहीं मालूम, एक हदीस भी नहीं मालूम, जो बिलीव ही नहीं करता कुरान और हदीस पे, एक नॉन मुस्लिम, वो भी इमाम अली के सामने सर झुकाएगा और उनको सैल्यूट करेगा। वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, किसी मुसलमान ने इमाम अली की बायोग्राफी नहीं लिखी है। इमाम अली को 21st सेंचुरी के हुक्मरानों के लिए रोल मॉडल यूएनओ ने या उसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने करार दिया, किसी मुसलमान मुल्कों की किसी अरब लीग वगैरह ने या इस्लामी कॉन्फ्रेंस ने यह ऐलान नहीं किया। इमाम अली का अपना कैरेक्टर, सबसे बड़ी इमाम अली की फजीलत वो है। कुरान की आयतें तो उसको मेंशन कर रही हैं, असल चीज इमाम अली से मतलब तमाम मासूम, कहा कि यह इनका कैरेक्टर। तो अब अगर लोगों को इनसे दूर करना, तलवार के जरिए हम गर्दन काट सकते हैं, कैरेक्टर खत्म नहीं कर सकते। जेल में डालने से हम पब्लिक के सामने से इनको, इनका एब्सेंस हो जाएगा, गैबत हो जाएगी, इनका कैरेक्टर खत्म नहीं होगा। अब तरीका यह है कि इनका कैरेक्टर खत्म करो। अच्छा, उसके दो तरीके होते हैं। पहला यह कि खुद इनको करप्ट कर दो। मालूम है कि ये तो नामुमकिन काम, नऊज़ु बिल्लाह, ये लफ्ज भी शायद मैं बतौर मिसाल भी गलत कह गया, लेकिन दुश्मनों की पॉलिसी ये कि भाई एक ही तरीका है ना, कोई आदमी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा और हमें अपने साथ मिलाना, उसको करप्ट कर दो। जब वो करप्ट हो जाएगा तुम्हारे साथ मिलेगा। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक यही तरीका है। बल्कि 1898 की कांग्रेस में तो जो दुनिया का एक ब्लू प्रिंट तैयार हुआ था, जिसका खुलासा यह था कि 21st सेंचुरी के अंदर दुनिया का कोई मुल्क सुपर पावर नहीं, ये चंद मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो दुनिया का निजाम चला रही। तो खैर, उसमें यह था कि मुसलमानों में जो पर्सनैलिटी सामने आए, पहले उसे खरीद लो, और अगर वो तुम्हारे हाथ में ना आए तो उसे कत्ल कर डालो। ये कोई नई चीज है, ये तो दुश्मनान अहले बैत ने जो ब्लू प्रिंट बनाया है वो ये वही है। तो अब क्या हुआ कि उसको करप्ट कर दो। बड़े अच्छे अच्छे लोग करप्ट किए गए, सोच भी नहीं सकते थे, शैतान तक करप्ट हुआ। शैतान हमेशा से शैतान कोई थोड़ी था। इब्ने ज़ियाद के बाद ज़ियाद का मैं तस्करा करता हूं, कैसे कैसे लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। मुख्तार नामे के शुरू में जो मुख्तार की अपने चचा से एक बातचीत, खैर बात फैल रही, छोड़, तो कहा कि एक तरीका ये, लेकिन मासूमी। अच्छा, कुछ कुछ जगह ट्राई की गई, दौलत भिजवाई गई, अशर्फियां भिजवाई गई, सोना चांदी भिजवाया गया। अपनी जगह खड़े होने से पहले इमाम ने राह खुदा में सदका कर दिया। तो आप जब ये देखा कि नहीं, ये तो एक इम्पॉसिबल काम, तो कहा दूसरा तरीका यह कि सोसाइटी को करप्ट कर दो। जब कम्युनिटी करप्ट हो जाएगी तो अब वो इमाम अली से और अहले बैत से घबराएगी। कभी कभार हम लोगों के साथ देखिए, हमारा स्केल बहुत छोटा स्केल, ये मत समझिएगा कि हम अपने आप को इमाम के लेवल पे ले जाके बात कर रहे हैं। कभी कभार हमारे साथ ये होता कि अब वो मजलिसों से एक इंप्रेशन बनता कि जी मौलाना दाढ़ी पे बहुत पढ़ते हैं, तो जिसने दाढ़ी शेव की हुई है उसको कोई प्रॉब्लम भी है, कोई बात करना है, वो हमारे सामने आता हुआ घबराता कि भाई ये दाढ़ी के बारे में बहुत पढ़ते हैं, मैं बगैर दाढ़ी के इनके सामने जाऊंगा, कुछ शर्माता है। बेपर्दा औरतें, अभी भी हमारी औरतों में उलमा और हम जैसे स्टूडेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट है कि दुनिया के सामने बेहिजाब जाए, हमारे सामने एक स्कार्फ वगैरह पहन के आ जाती। हमारे पास दोस्त इस पर मजाक उड़ाते हैं औरतों का, मैं अप्रिशिएट करता हूं, एटलीस्ट इतनी रिस्पेक्ट तो अभी बाकी है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी औरत है कि इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, वो डायरेक्ट सामने आते हुए घबराती है कि मौलाना हिजाब पर इतना पढ़ते हैं, हम बगैर हिजाब कैसे इनके सामने जाए। ये तो बहुत छोटी मिसाल है ना, इमाम अली का जमाना, अब मासूमीन का जमाना। करप्ट कर दो पूरे सोसाइटी को, यहां तक के करप्ट कर दो इमाम के शियों को, इतना इनका कैरेक्टर खराब कर दो कि अब ये इमाम से एक डिस्टेंस रखे, इमाम की तारीफ तो करें, इमाम का कसीदा तो पढ़ें, इमाम को प्रेस तो करें, इमाम के नाम का नारा तो लगाएं, इमाम के गम में आंसू तो बहाएं सिंसियरिटी से, लेकिन इमाम के करीब नहीं आए। क्योंकि ऐसे एक दो वाकयात भी हुए, बहुत ही जल्दी मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए अगर कोई कंफ्यूजन हो गया तो मेरे स्टाइल की खराबी होगी, वाकई में कोई खराबी नहीं। ये इमाम ने हाथ नहीं मिलाया मोमिन से, मोमिन आया इमाम के पास और मुसाफिर के लिए इमाम ने हाथ नहीं मिलाया, उसने एक एम्बेरेसमेंट फील किया। इमाम ने कहा भी रास्ते में तू एक नामहरम औरत से हाथ मिला के आया था ना, तेरा हाथ नजीस है, हम तेरे हाथ से अपने हाथ को टच नहीं कर सकते। एक नजासत होती है जाहिरी, जो हिंदू की नजासत का मसला है, एक नजासत होती है स्पिरिचुअली, आया तफहीर वाले। अब दोनों के पाक करने का भी तरीका अलग अलग, कुत्ते की नजासत हाथ पे लग गई पानी से पाक करो, ये स्पिरिचुअल नजासत लग गई तौबा से पाक करो। तौबा भी वन ऑफ दी मुताहिरात है, ये बहुत जल्दी जल्दी मैं जुमले कह रहा हूं। तो अब ये हुआ, मना किया इमाम, हाथ नहीं मिला रहा हूं, एडल्ट्री का गुनाह करके आया, इमाम ने घर का दरवाजा नहीं खोला। अब एक ऐसा गुनाह है कि उसने घर के अंदर किया, बाहर क्या पता लोगों ने क्या किया, लेकिन इमाम तो हर आदमी का इनर भी देखते हैं ना। ये तीन चार ऐसे वाकयात पेश है आपके जहन में कंफ्यूजन, इमाम का अखलाक तो बहुत अच्छा, इन नकाल आला खुलुकिन अली अजीम, इतना अच्छा अखलाक, और इस तरह इमाम ने उसको सबके सामने जलील कर दिया, ये आपने अपनी तरफ से ऐड किया कि सबके सामने, वाकई में कहीं नहीं है सबके सामने, ये वन टू वन की बात हो रही, ये खुद से लोग हदीस में एक चीज ऐड करते हैं और उसके बाद फिर एतराज करते हैं। लेकिन लेकिन रसूलुल्लाह के तो वाकयात है कि पब्लिक में वो दाढ़ी शेव करने वाला आया, पैगंबर ने मुंह फेर लिया, वो नजरान के ईसाई सोना चांदी पहन के आए, पैगंबर ने मुंह फेर लिया, वो तो पैगंबर के तो पब्लिक वाले वाकयात। तो अब क्या हुआ, ये तो बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल्स, लेकिन जब पूरी सोसाइटी करप्ट हो जाए, अच्छा बाकी लोगों को छोड़ें आप, इमाम के चाहने वाले, अब यह है कि खुद ब खुद एक डिस्टेंस आ गया इमाम के और उनके दरमियान। मैं कराची की एक बहुत ही सिंसियर मोमिना को जानता हूं, मोमिनात कहेंगी फिर मौलाना की फायरिंग का जो है वो टारगेट हम औरतें बन गई, अरे कुछ मर्दों के लिए भी तो पढ़िए। लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल, मैं झूठी तो नहीं बना रहा, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, बहरहाल उनका एक नजरिया, और उनका नजरिया यह है कि फरमाती हैं कि जब से हमने अपनी फैमिली ट्री को ट्रेस किया, फैमिली ट्री को ट्रेस किया, चार चीजें हमारी फैमिली में कभी नहीं आई और कयामत तक नहीं आई। कहा कि नंबर एक ये कि हमारी फैमिली में कभी किसी मर्द ने आज तक दाढ़ी नहीं रखी और कयामत तक नहीं रखेंगे, जरा उनका डिटर्मिनेशन तो देखिए, नीयत तो देखिए कितनी पक्की नीयत। हमारी फैमिली में आज तक न कभी हिजाब आया है और न कभी कयामत तक आएगा। और ये सेंटेंस एक और औरत ने कहा जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में एक बहुत मशहूर खातून है, मैं ये अपनी मजलिस का सब्जेक्ट नहीं बदलना चाहता, लेकिन उनसे तो मैंने कहा आप झूठ बोल रही, क्योंकि वो सैदानी भी अपने आप को कहती। मैंने कहा अगर आप सैदानी कहती हैं तो ये तो कहिए कि मेरे बाद मेरी नस्ल में कभी हिजाब नहीं आएगा, ये मत कहिए कि आज तक हमारे यहां कभी हिजाब नहीं आया, दुनिया को हिजाब मिला ही फातिमा से। तो खैर, अब ये बाज औकात लोग देखिए कितना बात को बढ़ाते। अब इन्होंने ये कहा कि ये हिजाब तो हम कर ही नहीं सकते, बस है हमारा फैमिली का एक्सट्रेडिशन। कुछ आर्गुमेंट भी उनके हैं जो आपको मालूम है बेहिजाब औरतों के, यार इस वजह से उन्होंने करबला की जियारत नहीं की। जब यह पता चला कि वहां हर औरत को अबा पहने बगैर हरम में एंटर नहीं होने गई, कहा कि हम हिपोक्रेट नहीं है कि बाहर कुछ और वहां कुछ और, जब तक कि ये हिजाब का कानून खत्म नहीं होगा हम करबला की जियारत को भी नहीं जाएंगे। और इमाम हुसैन से मोहब्बत इतनी है कि नाम सुनती आंखों में आंसू आते हैं। तो अब मैं एक बहुत ही छोटी एग्जाम्पल के जरिए 1400 साल पहले के हालात बता रहा हूं कि हुक्मरानों ने सोचा ईमान के शियों को करप्ट कर दो, इन्हें शराबी बना दो, इन्हें नमाज से हटा दो, इन्हें मिक्स गैदरिंग का आदि बना दो, इन्हें म्यूजिक के अंदर उलझा दो, इन्हें हराम खाने की आदत डाल दो, ये दूसरों की गीबत करें अपने ही मोमिनीन में, तो फिर ये इमाम से घबराएंगे। मोहब्बत इमाम से करेंगे, नाम भी इमाम का लेंगे, प्रॉब्लम में आवाज भी इमाम को देंगे। और कौन है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला? दूसरों को पुकार पुकार के थक जाइए, वो कहेंगे हम तो खुद इमाम अली का वेट कर रहे हैं कि वो आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो अब ये है कि नाम भी इनका लेंगे, मोहब्बत भी करेंगे। मैं इनकी मोहब्बत पे एतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैरेक्टर के एतबार से जब इतना फर्क आ जाएगा तो अब ये इमाम के करीब जाते हुए घबराएंगे, इमाम से दूर हो जाएंगे। और ये एक जुमला याद रखिए, एक बार डिस्टेंस आ गया, हर जनरेशन के बाद ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाता, आदमी भूल जाता है कि हम कहां से स्टार्ट हुए। कितने सैयद ऐसे हैं जो तकैये, उनके बुजुर्गों ने तकैया किया चार जनरेशन पहले, आज वो भूल भी गए कि हमारा स्टार्ट कहां है, आज वो दुश्मनान अहले बैत की लिस्ट में शामिल है। खाली ऐसा नहीं है कि गैर शिया नहीं, दुश्मनान अहले बैत की लिस्ट में शामिल है। मैं सद्दाम की बात नहीं करता, वो तो खैर झूठा सैयद था, जाली सैयद था, फेक सैयद था, मगर कहता तो वो भी सैयद था ना, अपना शजरा रोजों में लगा के रखता था। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक नाम, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, कितना बड़ा दुश्मन है अहले बैत, सैयद, अपने आप को सैयद भी डिक्लेयर करते हैं। खैर, शबहाए पिशावर यानी पिशावर नाइट्स किताब में, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है ना, वो जो वाकया है कि जो लोग मुनाजरा कर रहे थे उनमें सैयद भी थे दुश्मन अहले बैत बन के आए। सिर्फ एक जुमला जब कहा सुल्तानुल वाइजीन शिराजी ने, जो शियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अहले बैत पे क्या जुल्म हुआ, वो दुश्मन ने, इन्होंने कहा इससे बड़ा जुल्म क्या होगा, तुम अपने आप को फातिमा का बेटा कहते हो और फातिमा की औलाद से दुश्मनी करके फातिमा के दुश्मनों को प्रोटेक्ट करने आए हो। वो ये जुमला उनके सीने में लगा, वो चेंज हो गए। लेकिन कहने का मकसद यह है कि ये लोग जो सैयद भी हैं और दुश्मन अहले बैत भी हैं, हाउ इट्स पॉसिबल, तकैया चार जनरेशन, पांच जनरेशन, छह जनरेशन पहले गुजरी। तो अब ये तो बहुत सारी बातें आज मैंने मिक्स कर दी, बहुत ही शॉर्ट, ताकि एक दफा डिस्टेंस आ जाए मोमिन और इमाम के बीच में, तो अब हर जनरेशन में ये बढ़ता चला जाएगा। और डिस्टेंस आने का एक ही तरीका, तलवार के जरिए हम शिया को इमाम से दूर नहीं कर सके। जब आज दुनिया कितनी सेल्फिश हो गई, और इमाम भी नहीं है, नायब इमाम, कितने इराक के लोगों से मैंने नहीं सुना, ये वर्ल्ड मीडिया ने रिपोर्ट किया, वो कहते हैं कि आज भी अगर आयतुल्लाह सिस्तानी हुक्म करें हम अपने बेटे की गर्दन काट के उनके कदमों में डाल देंगे। तो अब जब सोचिए इमाम का स्टेटस क्या, इमाम इमाम है। तो अब यह है कि जब देखा कि हमने शियों पे टॉर्चर किया, वो इमाम के और करीब आ गए, बल्कि प्रॉब्लम्स में तो और इमाम के करीब इंसान आता, और बाकी सारी चीजें रिपीट नहीं करेंगे। करप्शन अगर फैला दो अमंग शियाज, ना इनका खाना ठीक, ना इनका ड्रेस ठीक, ना इनका घर ठीक, ना इनका लाइफ स्टाइल ठीक, अब ये इमाम को अपने घर बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि घर ही ऐसा, ना मेरा औरतों की तस्वीरें लगी हैं, मिक्स गैदरिंग घर के अंदर भी हो रही है, गाने की आवाज, ये इमाम के घर चले जाएंगे। इमाम के घर जाना आसान है भाई, गए बहुत ही नेक शरीफ बन के आप इमाम के घर गए, आधा घंटा मिलके आ गए, पांच मिनट इमाम को अपने घर में बुलाया और इमाम ने ये सब देखा कि क्या हो रहा है घर के अंदर। तो अब ये एक तरीका, इमाम के जाने वालों को करप्ट कर दो। और कैसे करप्ट होगा इमाम के जाने वाले, वो एक तरीका चौथे इमाम के जमाने में है, इमाम अली के जमाने में नहीं था, आका हसन के जमाने में नहीं था, आका हुसैन के जमाने में नहीं था, और फिर 5, 6, 7, 8 कहीं नहीं था। वो ये था, बेहयाई, फहाशी, बेगैरती, ये सोसाइटी में ओपनली फैलाओ। हुक्मरान हमेशा शराब पीते थे, कौन ऐसा हुक्मरान है? बाद में जब कातिलाना हमले हुए और उनका पेट कटा तो उसमें से शराब निकली और निकल रही थी मुसलसल, नमाज पढ़ाने आए और शराब पी के आए। लेकिन हर दौर के, ये तो बहुत बड़े आदमी का मैंने नाम लिया है, इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता इस मेंबर से, लेकिन बाकायदा इस तरह खाने काबा की छत पे बैठ के शराब पीना, रोज़े रसूल पे सुफरा बिछा के शराब पीना, ये खाली ये गुनाह नहीं है कि हमें शराब पीना, ये है फहाशी, बेहयाई, शेमफुल एक्ट, इनडिसेंट एक्टिविटीज, ओपन गुनाह, इसको प्रमोट करना। गुनाह हर दौर में होते हैं, लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं कि टेलीविजन और मीडिया की वजह से कैसे कैसे गुनाह ऐसे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, आपके बच्चे आंखों से देख रहे हैं और देखने की वजह से हैबिचुअल हो रहे हैं। स्टिल इंडिया और पाकिस्तान में शराब अगर किसी गिलास में है तो मोमिन गिलास से भी डिस्टेंस रखेगा। या इतना देखा, देखते देखते अब देखिए, सारी चीजों की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मेरा जुमला कि इतना खुल्लम खुल्ला बेहयाई का काम, कनीज नजासत के आलम में है, उसे अमामा पहना के मस्जिद में भेजा, जाओ जाके नमाज जमात पढ़ाओ, ये क्या है? ये सोसाइटी में गुनाहों को प्रमोट करना है, खुले खुले गुनाह करना है। तो चौथे इमाम के जमाने में बस, अब ये बहुत सारे मोमिन कहेंगे कि मौलाना अगर आप सिर्फ एक ये सेंटेंस कह देते तो ये 20 मिनट का टाइम हमारा बच जाता, हम इससे बात को समझ गए। वो ये कि चौथे इमाम के जमाने में तलवार, तीर, जहर, जेल, ये मीडिया प्रोपेगेंडा, ये सब बहुत पीछे था, लेकिन जो असल तरीका था लोगों को करप्ट करना था। और मैं अपने इंडिया, पाकिस्तान और शायद ईस्ट अफ्रीका में, हमारे यहां सरकारी डिपार्टमेंट बहुत करप्ट, बगैर रिश्वत या ब्राइबरी के कोई काम नहीं होता। अब अगर कोई ऐसा उस ऑफिस का बड़ा मैनेजर या सुपरवाइजर या जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उस पर कोई बहुत ही ईमानदार आदमी आ जाए, वो खुद भी हराम काम ना करे, किसी और को भी रिश्वत ना लेने दे, तो अच्छी चीज है ना, ऑनेस्टी तो अच्छी है ना, इट्स द बेस्ट पॉलिसी, मैंने तो यहां यही सुना है। तो अब यह एक अच्छी चीज है, लेकिन वो डिपार्टमेंट के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ साजिशें शुरू होंगी, ये कुछ अरसे रह जाएगा तो हमारे घर में फाके हो जाएंगे। अगर ऑनेस्ट बनना है खुद बने, हमसे ना कहे कि ऑनेस्ट बनो। अब ये चौथे इमाम के जमाने में किया कि शिया सोसाइटी को इतना करप्ट कर दो, और करप्शन का तरीका क्या, वो यही है कि ओपन गुनाह कराओ। एक एक शिया से तो वो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, जो आज खराबी फैलाना है तो इंटरनेट इस्तेमाल होगा, आज खराबी फैलाना तो टीवी इस्तेमाल होगा, एक एक घर आके को थोड़ी खराब करेंगे। जब गुनाह इतना फैल जाए तो एक शिया ने भी अपनी बीवी से कहा, भाई कल हम शादी में गए थे, फला दुश्मन है अहले बैत की, कितना मजा आया था, औरतें डांस कर रही थी, मर्द गाना गा रहे थे, हमारी बेटी की शादी होगी, हम भी यही करेंगे। वह खराबी इस तरह फैलती, पहले उसको बुलाया, खाली उसको दिखाया, और वही बात कि इमाम कह रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी से हटके नहीं चलना है तुम्हें, शिया का प्रमोशन है, इन्हीं लोगों को तो आगे चल के शिया बनाना है। तो खैर, अब ये था कि ओपन गुना, ये या चौथे इमाम का जमाना था या इमाम जमाना का दौर, इमाम का हर दौर नहीं, इमाम जमाना का आखिरी जमाना, इतना करप्शन फैला दो सोसाइटी में, माल का नहीं कह रहा हूं, एक मोरल करप्शन होता, सारी वैल्यूज चेंज कर दो, रिस्पेक्ट दिलों से निकाल दो हर चीज की, और गुना खुल्लम खुल्ला करो। अब देखिए, पूरी तारीख शियत में या ह्यूमन हिस्ट्री में या इस्लामिक हिस्ट्री में आपको कभी यह जमाना नहीं मिलेगा, यह चौथे इमाम का जमाना मिलेगा। हमारे यहां बड़े इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है, तारीखुल खुलफा, जो खलीफा गुजरे हैं उनकी हिस्ट्री, तो उसमें चौथे इमाम वाले जो खलीफा हैं उनके हालात देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट, ना आपके पास टाइम है इतना पढ़ने का, ना मेरे पास टाइम है मिंबर से ये बात रिपीट करने का। जो देख, चौथे इमाम से पहले के भी खलीफा गुजरे, वो अपने आप को बड़ा रिलीजियस शो करते थे, घर में सब कुछ करते थे पब्लिक के सामने, चौथे इमाम के बाद भी खलीफा गुजरे, वो भी अपने आप को बड़ा रिलीजियस शो करते थे, चौथे इमाम के टाइम पीरियड के जो खलीफा है वो अपने आप को रिलीजियस शो नहीं करते, वो शराबी शो करते हैं, वो गुनाहगार शो करते हैं, वो म्यूजिक का शौकीन शो करते हैं, क्यों? इसलिए कि उनका तरीका यही था। और इमाम जमाना की इमामत का जो आखिरी दौर है, आखिरी जमाना जिसे कहते हैं, आज शबे जुमा तो इमाम को भी याद करना, उसमें भी यही होगा कि तलवार के जरिए शियत को नहीं रोका जाएगा, पता है कि हमेशा हम फेल हुए, एक टेम्परेरी शियत रुक सकती है तलवार के जरिए, लेकिन फेलियर जेल के जरिए नहीं। देखिए तलवार और जेल को सद्दाम से ज्यादा किसने इस्तेमाल किया, और आज जाके आप देख ली कि कर्बला में अगर 10 से 15 मिलियन शायरीन पहुंचे हुए हैं, तो सद्दाम के सारे जुल्म का जब ये नतीजा निकला कि 50,000 जायरीन के बदले 15 मिलियन जायरीन बन गए, तो पुरानी हिस्ट्री छोड़िए, अभी भी हमारे सामने पता चला तलवार फेल हो गई। सद्दाम से ज्यादा किसी ने तलवार चलाई, इस वक्त की बात कर रहा हूं, पुरानी हिस्ट्री में नहीं जा रहा। सद्दाम से ज्यादा किसी ने जेल को इस्तेमाल किया। जब 91 का अपराइजिंग हुआ, एक वाकई आप अक्सर सुनते हैं, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं और टाइम स्लिप हो रहा, कि जब अपराइजिंग हुई और एक जेल तोड़ी गई, तो जब जेल टूटती है तो ये डिक्टेटर्स की जेल में यूजुअली बेगुनाह लोग होते हैं, वो सब निकलते हैं, नहीं निकली वहां से, क्यों पता चला, या वो औरतें जिन्हें सर से पैर तक मुकम्मल नेकेड जेल में रखा गया है, इसी तरह उनके साल हर साल गुजर रहे हैं, इतने काबिल एहतराम खानदान की कि उनका नाम लेना एक तौहीन और हराम, मगर क्या फायदा हुआ? सद्दाम को क्या मिला इसकी वजह से? कौन सी शियत कम हुई या कम वीक हुई और स्ट्रांग हो गई? तो भाई आखिरी जमाने में फिर वही चौथे इमाम वाली बात। और इसमें स्पेशली एक जुमला और कह रहा हूं, यह जुमला भी एक्सप्लेनेशन मांगता है लेकिन टाइम नहीं, और वही है कि जो गुनाह इस तेजी से बढ़े। एक अरब स्कॉलर का एक आर्टिकल मैंने मक्के में ड्यूरिंग हज पढ़ा था, अभी नहीं, यह कोई 15-20 साल पहले की बात, सऊदी अरब के न्यूज़पेपर में नहीं, वहां उसने एक जुमला कहा था किसी और सेंस में, लेकिन वही उसका जुमला मेरी मजलिस का सब्जेक्ट बन गया। उसने कहा था कि मक्के और मदीने या हिजाज के लिए, हिजाज जहां पे हज होता, या जिसको अगर आप सऊदी अरब कह लें, अगर कि सऊदी अरब अलग चीज है, हिजाज अलग चीज है, लेकिन अब टाइम नहीं है इन चीजों की डिटेल में जाए। उसने कहा कि यहां की हिस्ट्री में 2 दिन बहुत बहुत बड़ी हमारे लिए ट्रेजेडी, बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे लिए, 2 दिन। अब उसको तो कुछ मालूम भी नहीं कि 12 इमाम कौन, ना उनको नाम को जानता है। ये हदीस तो सारे मुसलमानों में है कि रसूल ने कहा मेरे बाद 12 खलीफा होंगे, लेकिन वो 12 कौन उसको कुछ नहीं मालूम, वो तो अपना सिलसिला या सीक्वेंस बनाते हैं। उसने कहा पहला वो दिन जब मिस्र हो, मराकश हो, स्पेन हो, ईरान हो, इंडिया हो, वो रशियन स्टेट जिनमें से आप शायद कुछ तो यूरोपियन यूनियन में भी शामिल हैं, तो वेस्ट एंड में आपको नजर आती होंगी, कहा कि जिस दिन वहां पे इस्लाम पहुंचा वो बड़ा खतरनाक दिन है, ट्रेजेडी है हमारे लिए। और दूसरा जिस दिन सऊदी अरब में ऑयल या तेल निकला, पेट्रोल। अब ये कि इस पेट्रोल के निकलने के बाद जिस तेजी से अरब दुनिया में करप्शन आया, ये जो करप्शन आप सुनते हैं कैसीनो में ये किया और फला जगह ये किया और होटल में ये किया, ये सब कब आया? ये पेट्रोल के बाद का एक ये दिन और एक वो दिन। और वो जो दिन का रेफरेंस वो दे रहा है वो किसका जमाना था? चौथे इमाम का। और ये जो पेट्रोल निकला ये किसका जमाना? ये इमाम जमाना का दौर। वही जुमला जो मेरा सब्जेक्ट है, चौथे इमाम और इमाम जमाना, जो अरब हिस्ट्री पर अपने एंगल से गौर कर रहा वो यही कह रहा कि ये 2 बहुत बड़ी ट्रेजेडीज हमारे यहां हो। भाई क्यों? कहा कि जब, अब ये उसका जुमला है तो इसको बहुत मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं डालिएगा, और टाइम भी नहीं है कि जरा मैं इसको रिफाइंड करूं और पॉलिश करूं। कहा इसलिए कि उन मुल्कों की जो औरतें अरब दुनिया में आई, ये अरब जो सऊदी अरब वाला अरब, तो अरब के लोगों की तो आंखें फट गई, खूबसूरत, गोरी, वाइट स्किन, वो सारी चीजें का करप्शन शुरू हुआ। और जिस दिन यहां पेट्रोल निकला और पैसा इतना आया तो करप्शन शुरू हुआ। और यही बात मैं कह रहा हूं, चौथे इमाम का जमाना, कि इस्लाम ऐसे इलाकों में चौथे इमाम के दौर में गया कि अरब के लोगों ने तो उन इलाके की औरतों को कभी नहीं देखा, जन्नत की हूरों से ज्यादा उनको वो खूबसूरत लग रही थी। मैं अरब की औरतों का जरा बयान करना चाहता था, लेकिन एक तो आज वैसे ही शबे जुमा, जरा हमें एहतियात करना है, फिर चेलुम की रात बहुत करीब। एक वो, और फिर ये कि जब पैसा आया और ये लोग दुनिया के उन इलाकों में आए जहां आज आप बैठे हुए, यहां भी यही चीजें देखी। अब मैं क्या कहूं, कहा भी नहीं जा रहा, बगैर कहे मेरे पास रास्ता भी नहीं। तो अब चौथा इमाम और इमाम जमाना सिमिलर हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के हवाले से भी, मगर सबसे बड़ी चीज दोनों की इमामत का जो बड़ा प्रॉब्लम दुश्मनान अहले बैत ने क्रिएट किया, गुनाह फैलाओ, बेहयाई फैलाओ, फहाशी फैलाओ। अब यह सवाल पैदा होता कि इससे तो हमारे लिए एक बहुत इजी चीज सामने आ गई, वेरी इजी। भाई देखिए, अगर ये इमाम जमाना के आखिरी दौर में, ये आखिरी जमाना 100% श्योर तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हालात से लग रहा है जो साइंस ऑफ जुहूर है, तो अब अगर ये वाली चीज इस्लामिक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आती तो हमारे पास कोई पहले से एक मिसाल या मॉडल नहीं था कि हम किस तरह से फिर सर्वाइव करें गुनाहों के इस माहौल में। मगर चूंकि चौथे इमाम के जमाने में यह चीज आ चुकी है और इमाम सामने थे, तो बहुत इजी हो गया। देखो चौथे इमाम ने किस तरह से अपने जमाने के शिया को बेहयाई के उस माहौल से बचाया, जो आज तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम्हारी औरतें, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम्हारे यूथ हाथ से निकले जा रहे हैं। जो इस अफ्रीका का माहौल देख के यहां आए, जो इंडिया पाकिस्तान देख के यहां आए, वो कितने परेशान होते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मगर चूंकि ये रिपीटेशन है चौथे इमाम के हालात का, तो हालात सिमिलर, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट यह है कि इन सिमिलर हालात में चौथे इमाम ने क्या तरीका इख्तियार किया, वही आज हमारे काम आएगा। और उसके अंदर आपको तीन चीजें बहुत अहम मिलेंगी, टाइम बहुत कम। नंबर एक, दुआ। दुआ और मौजूदा जमाना, जो मैंने कहा दुआ, इससे पहले भी एक दिन एक जुमला कहा था, आज उसको रिपीट कर दू, कौन सा इमाम मासूम ऐसा है जो दुआ खुद भी ना मांगे और पब्लिक को भी ना सिखाए। अभी आप इमाम अली की दुआएं को मैं सुन के बैठे, हर इमाम के पास दुआ, मगर दुआ और चौथे इमाम का कनेक्शन कितना स्ट्रांग, कि इधर आप चौथे इमाम का नाम लेंगे सबसे पहले दुआ आएगी, इमाम अली का नाम लेंगे दुआ आपके जहन में नहीं आएगी, जबकि इमाम अली की दुआएं भी कम नहीं, सहीफा अलविया के नाम से कितने वॉल्यूम में इमाम अली की दुआएं, मगर चौथा इमाम, क्योंकि चौथे इमाम ने अपनी इमामत में सबसे ज्यादा दुआ के फोरम को या प्लेटफॉर्म को यूज किया लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। जब माशरे में मोरल करप्शन फैलाया जाता तो चूंकि हुकूमतें फैला रही, इसलिए वो उसके अगेंस्ट स्पीच भी नहीं करने देंगे, कहेंगे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप अपनी औरत से नहीं कह सकते हिजाब करो, आप अपने यूथ से नहीं कह सकते कि मिक्स गैदरिंग में या म्यूजिक में ना जाओ। यानी फिर हुकूमतें एक तरफ से गुनाह प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो इसको रोक सकता है उसकी जबान पर पाबंदी लगा जाती है मुख्तलिफ बहानों से। चौथे इमाम का जमाना भी ऐसा ही था, इमाम ने दुआ के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, दुआएं पढ़ते जाइए। अगर आपके जहन में यह बैकग्राउंड नहीं है तो आप कभी परेशान होंगे, चौथे इमाम इतनी तौबा कर रहे, इतना अपने माजी के गुनाहों को याद कर रहे, नऊज़ु बिल्लाह, अरे इस तरह अजाब खुदा से डर रहे हैं। आज एक अहम मोमिन भी ये कहता, मौलाना क्या अजाब खुदा, फरिश्ता कब्र में आएगा डांट के उसको भगा देंगे। एक अहम मोमिन ये कहता, अदवाए अबू हमजा सोमाली में इमाम कहते, अब की ले खुरूज रूह, अब की ले जीक लादी, अब की ले सवाल मुनकिरिन व नकीरिन फी कब्री, अब की ले खुरूज मिन कब्री हामिल सिक्ली अला ज़हरी, अल्लाह ही आमिल नि बेफजले का वला तो आमिल नि बेअदले का। मौला आज आप जो रो रहे हैं, दुआ अबू हमजा सोमाली, माह मुबारक रमजान में हर रात को ये दुआ पढ़ते हैं। मौला आज जो आप रो रहे हैं, ये रोना वो करबला के रोने से अलग रख रहा, क्यों कहा मैं रो रहा हूं उस मुश्किल वक्त को याद करके जब मलकुल मौत बदन से रूह को निकाले। अल्लाह कितना तकलीफ और अजाब का वक्त होता, मैं रो रहा हूं जब मैं कब्र में जाऊंगा और फिशारे कब्र होगा, कब्र की दीवार मुझे अपने दरमियान लेके दबाएगी और अजाब देगी। लफ्ज بار بار یا آیا ہے، واحد متکلم یعنی می مائی آئی، یہ لفظ آئیں. یہ بھی نہیں کہا ہم، کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم میں تو سارے شیعہ آتے ہیں، نہیں. میں اپنی قبر لہدی، میری قبر جب وہ تنگ کی جائے گی اور فشار کا عذاب آئے گا. وہ چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے فشار قبر کا عذاب. اب کیلے سوال منکرین و نکیرین فی قبری، ہم کہتے ہیں کہ فرشتہ آئے گا ہم ڈانٹ کے بھگائیں گے، چوتھا امام کہتا ہے میں رو رہا ہوں، جب منکر و نکیر آ کے میری قبر میں سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گا. اب نعوذ باللہ، امام منکر و نکیر امام کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس پہ تو میں ابھی آخر میں آتا ہوں، ورنہ ٹائم پھر ضائع ہوگا. اب کی میں یاد کر رہا ہوں وہ وقت، خروج من قبر حاملا ثقلی علی ظہری، وہ قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اس حالت میں نکلوں گا کہ اپنے زندگی بھر کے اعمال کو اپنی کمر پہ خود اٹھا کے آؤں گا. نیکیاں ہیں تو کیا کہنا، اور گناہ ہے تو پورا بوجھ اٹھا کے جائی. اور اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے الہی عاملنی میں فضلک، اے خدا. ہر جگہ لفظ آیا ہے واحد متکلم یا والا، یعنی میں، ہم نہیں کہا کہیں پہ. کہ اے خدا، جب میرا حساب کتاب ہو تو اپنے فضل اور رحمت سے کام لینا، عدل سے کام نہ لینا. اتقی عدلک ولا خاف جورک، اے خدا تیری جانب سے مجھے یہ تو اطمینان ہے تو ظلم تو کر ہی نہیں سکتا، میں تیرے عدل سے ڈر رہا ہوں. عدل سے، عدل کا مطلب اصول دین ہے عدل، کہ اگر جیسا ہمارا اعمال ہے ویسا ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا تو شاید ایک آدمی بھی جنت میں نہ جائے ہم میں سے. کہ رحمت رحمت. اب یہ امام کس کو سنا رہا ہے؟ امام کے یہ جملے کون سنے گا؟ منکر و نکیر، فشار قبر، قیامت کے دن. کل تو میں نے خالی ایروگنٹ لوگوں کا بتایا کہ وہ چوٹی کی شکل میں آئیں گے، مگر جو خنزیر کی شکل میں آئیں گے، جو کتے کی شکل میں آئیں گے، جو بندر کی شکل میں آئیں گے، جو اپنے بالوں سے باندھ کے لٹکائی جانے والی عورتیں اور مرد آئیں گے، حاملن ثقلی علی ظہری. دیکھیے یہ ہے اس بے حیائی اور کھلم کھلا گناہ میں ڈائریکٹ بات کر بھی نہیں رہے اور اس کا علاج بھی دے رہے ہیں. کہ کیا چیز؟ خوف خدا، فیئر آف اللہ دل میں پیدا ہو جائے. اور فیئر آف اللہ تقریروں سے پیدا نہیں ہوتا ہے، دعاؤں سے پیدا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. جو لوگ پوری پوری مجلس سنتے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ دعائے کمیل کا ترجمہ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ تڑپنے تو لگتے ہیں، وہ دعائے عرفات حج والا ترجمہ دیکھتے ہیں تڑپنے تو لگتے ہیں. فیئر آف اللہ، یہ جو امام نے اصول، اور دیکھیں وہ بہت مشہور روایت ابھی لیس دین ون منتھ اگو آپ نے سنی ہوگی، امام کے گھر میں آگ لگ گئی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، سارے گھر والے پریشان، امام نماز میں، نماز ختم، آگ بجھا دی گئی تو لوگ قریب آ گئے، اور یہ لوگ سے مطلب عام لوگ نہیں ہیں، امام کے فیملی ممبر. امام نے نماز ختم کی، چاروں طرف دیکھا، کہا یہ کیا ہوا گھر میں؟ یہ دیوار جلی ہوئی، وہ دروازہ جلا ہوا، وہ کھڑکی جلی ہوئی. تو مولا آگ لگ گئی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اتنی بڑی آگ کیسے آپ بھول گئے؟ کہا قیامت کی آگ اور جہنم کی آگ کے ڈر نے دنیا کی آگ میرے دل سے نکال دی. قیامت یاد دلاؤ، جہنم یاد دلاؤ، عذاب خدا یاد دلاؤ. اگر کہ اس کی وجہ سے سم ٹائمز یہ فیل ہو جیسے نعوذ باللہ امام بھی گناہگار ہے، نعوذ باللہ. یہ دعا کو امام نے استعمال کیا آج کے زمانے میں سب سے بڑی چیز، مومن کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے والی یہ دعا. اور دعا کے حوالے سے پھر حج اور نماز، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، نماز اور حج، دعا. اور اس پہ مجھے بات کرنا تھی لیکن اب وقت بہت زیادہ گزر گئے. بس ایک چھوٹی سی بات عرض کروں اور آج کی گفتگو ختم. راوی امام کے ساتھ حج پر گیا، یہاں سے مجھے کنیکشن دے کے حج پہ آنا تھا. چوتھا امام اور دعا، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے توبہ، صحیفہ کاملہ کی ہر دعا دیکھ ڈالی. اور صحیفہ کاملہ تو کچھ بھی نہیں، 10 والیوم کے اندر صحیفہ کاملہ کے بعد کی جو دعائیں، 10 والیوم میں وہ بک چھپ چکی ہے، صحیفہ کاملہ ثانیہ ثالثہ رابعہ الخامسہ. لیکن پھر اس میں ایک چھوٹی سی بات اور مجلس ختم. راوی امام کے ساتھ حج پر گیا और इमाम भी वो जिसका अपना टाइटल है बाबुल हवाइज, इमाम के साथ हज पर गया। अराफात का मैदान दुआ का मैदान। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि उस दिन नमाज भी शॉर्ट करो ताकि ज्यादा टाइम दुआ को मिले। रावी ने देखा कि इमाम जोहर से गुरूब तक जो अराफात का स्टे, पूरा दिन दुआ मांगते रहे। एक दुआ इमाम ने अपने लिए नहीं मांगी, नॉट अ सिंगल दुआ। सूरज डूबा और सब लोगों ने अपनी सवारियों को तेजी से चलाना शुरू किया। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में है कि मगरिब इशा की नमाज अराफात में मत पढ़ो, हराम नहीं है लेकिन मुस्ताह सुन्नत मौकदा, तो जल्दी से निकलो। रावी ने आगे बढ़ के एक सवाल किया, दो जवाब इसके हो सकते हैं। पहला सवाल, सवाल पहले क्या किया, सवाल यह किया कि मौला इतनी अहम जगह दुआ की कि इमाम मासूम की हदीस मफातिहुल जिनान में देख लें, जो शब कदर और रमजान में अपने आप को माफ ना करा सका, देयर इज नो चांस, या अपनी हाजत पूरी ना करवा सका, एक्सेप्ट अराफात का मैदान। अराफात का मैदान रमजान और शब कदर से बढ़कर, जो यहां भी रह जाए उसको वहां मिल जाता है। मौला एक सिंगल दुआ आपने अपने लिए नहीं मांगी। अब इमाम देखिए, एक तो ये था, इमाम कहते हमें जरूरत क्या, हम तो लोगों की हाजतें पूरी करते हैं, ये कहते तो ठीक है, ये जवाब बिल्कुल परफेक्ट ऑल राइट, फिर इस हदीस का हमसे ताल्लुक नहीं होता, ये इमाम की फजीलत वाली हदीस हो, ये नहीं कहा। इमाम ने कहा ये बताओ तुम एक ऐसी दुआ चाहते हो कि पता ही नहीं 50-50 है अल्लाह के पास जाएगी कि भी नहीं जाएगी, या ऐसी दुआ चाहते हैं जो 100% कन्फर्म वहां जाके कबूल भी हो जाए। दुआ में तो दो मसले, पहले दुआ यहां से वहां तक पहुंचे कि भी नहीं पहुंचे, दुआ में इतनी पावर है हमारी कि वहां जाए, और वहां जाए तो फिर कबूल हो के कबूल ना हो, पता चला एहसान फरामोश है, पता चला सिला रहमी नहीं करता, पता चला किसी मोमिन की गीबत करके बैठा हुआ, वहां पहुंच भी गई तो दुआ रुक जाएगी, या ऐसी दुआ चाहिए जो 100% कन्फर्म वहां जाएगी भी और एक्सेप्टेड कबूल भी। कहा मौला ऐसी दुआ चाहिए। कहा सुनो, जब कोई मोमिन अपने लिए दुआ करता, अब ये दुआ 50-50 पता नहीं आसमान तक पहुंचे कि उससे पहले ही रुक जाए, और पहुंच भी जाए तो पता नहीं कबूल हो कि कबूल ना हो, पूरा सब्जेक्ट है कि दुआ वाय दुआ क्यों कबूल नहीं। लेकिन जब एक मोमिन वही चीज जो अपने लिए चाहिए किसी और के लिए मांगता, तो 70,000 फरिश्ते अपॉइंट हैं इसी काम के लिए कि वो एक साथ कहते हैं खुदावंदा इसने उसके लिए ये चीज मांगी, हम यही चीज इसके लिए मांग रहे हैं। फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, फरिश्ते एहसान फरामोश नहीं होते, फरिश्ते आके वालिदैन नहीं होते, फरिश्ते गीबत करने के आदी नहीं होते, फरिश्ते मिक्स गैदरिंग में नहीं बैठते, फरिश्तियां बेहिजाब नहीं घुमा करती। अब जो भी लफ्ज हो, तो खुलासा ये कि उनकी दुआ वहां पहुंचेगी भी, क्योंकि वो तो वहीं बैठे हुए हैं, वो जो आपके लिए दुआ मांग रहे हैं वो तो वहीं बैठे हैं जहां पे आखिर में हर दुआ को जाना, और मासूम फरिश्ते हैं, कोई ऐसी रुकावट भी नहीं। इमाम ने कहा बस दुआ का बेहतरीन तरीका ये कि अपने लिए भी मांगो लेकिन बाद में पहले यही सोचो, मेरा फला प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही है, उसका भी तो प्रॉब्लम है, पहले उसके लिए, खाली दुनिया दिखाने के लिए नहीं, दुआ बिटवीन यू और अल्लाह, वाकान सिंसियरिटी के साथ वो दुआ यकीनन कबूल। अब दुआ के हवाले से इमाम सोसाइटी को करप्शन से बचा के दूसरे मरहले पे ला रहे हैं, जो मैंने कहा था ना कि आज के जमाने में सेल्फिश, हर आदमी सेल्फिश। ये दुआ में जब पहला उसूल बताया कि दुआ तक तुम्हारी नहीं चलती जब तक के दूसरों का ख्याल ना करो, इसको अरबी में ईसार कहते हैं, लेकिन ये बाकी बातें बाद में होंगी, पहले दूसरे फिर अपने, और यही आप अहले बैत का तरीका देख लें। पिछली दफा जो मैंने 3-4 दिन पहले रिवायत पढ़ी, उम्मे हबीबा बाजार कूफा में दुआ मंगवा चाहती हैं, सकीना को पानी भी दे दी, बच्ची ने कहा नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगी, पहले तेरे हक में दुआ करूंगी। और पूरे रास्ते में आपको, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि मैं मजीद वाकयात के जरिए इस बात को और वाज़ेह करूं, पूरे रास्ते में अहले बैत का इस हालत में भी आपको यही तरीका नजर आएगा, पहले दूसरों के प्रॉब्लम का ख्याल फिर अपने हवाले से कोई बात करना। बल्कि चेलुम की रात कल शब अरबईन और सैटरडे जवाल का वक्त चेलुम के दिन की मजलिस। इसमें मसाए पढ़े जाते हैं कि अहले बैत करबला पहुंचे और कब्रों पे गए। तो आज बहुत मुख्तसर बात, जरा लंबी हो गई, शब जुमा भी थी, बहुत ही मुख्तसर वो मसाए पढ़ रहा हूं जिसका ताल्लुक मेरी तकरीर के इस हिस्से से भी है, पहले दूसरा मोमिन फिर अपना, और मसाइब चेलुम के मसाइब से भी। 11 मुहर्रम को जब ज़ैनब करबला से चली थी तो कोई कब्र नहीं थी, लाशें बिखरे हुए थे। 40 को जब ज़ैनब करबला वापस आई तो सब कब्रें बनी हुई, कब्रों पे पहुंची लाशों पे नहीं। तो ये दरमियान में करबला से जाना और फिर वापस करबला आना, इसमें ये कब्रें, ये लाशें कब्रों में कैसे पहुंचे और किसने पहुंचा। चुनाचे आमतौर पर आज की रात हम इसी सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन लाशों के दफन की रिवायत नहीं पढ़ रहा हूं, वो हम लोग उमूमन यूजुअली 12 मुहर्रम को पढ़ते हैं। यहां तो एक और सवाल का जवाब देना, एक तो ये सवाल ज़ैनब लाशें छोड़ के गई कब्रें, मेरा चौथा इमाम बाय मैरिकल वापिस आया और आके ही लाशें दफन की। पहला लाशा किसका दफन किया, बाबा हुसैन का? नहीं। पहला लाशा किसका दफन किया, चचा अब्बास का? नहीं। पहला लाशा किसका दफन किया, भाई अकबर का? नहीं। पहला लाशा दफन किया जॉन गुलाम हबशी का। पहला लाशा दफन किया हिलाल इब्ने नाफे बजली का। पहला लाशा दफन किया मुस्लिम इब्ने असजा का। पहले ये असहाबे इमाम के लाशें दफन किए जा रहे हैं, पहले एक एक सहाबी और एक एक गुलाम का लाशा दफन किया, फिर अपने खानदान वालों की बारी आई। जिस इमाम मासूम ने लाशों के दफन में भी इसका ख्याल रखा, कायनात का सबसे अफजल लाशा बेगोरो कफन पड़ा है हुसैन का लाशा, और सज्जाद के दिल पे सबसे ज्यादा कयामत गुजरती है हुसैन का लाशा देखकर। मगर नहीं, खानदान के लाशें बाद में दफन होंगे, गैरों के लाशें पहले दफन होंगे। और यहां पर एक अजीब सवाल और बात खत्म, बात खत्म। और वो ये है कि जब ये लाशें दफन किए तो सारे शहीद एक कब्र में आए, गंजे शहीदा, हबीब इब्ने मुजाहिर अलग, हुर इब्ने यजीद रियाही अलग, आका अब्बास अलग। अब वो सबको मालूम है कि क्यों, गंजे शहीदा। और खुद जरी के अंदर जो आज जरी, उस वक्त जरी तो नहीं, हुसैन का लाशा दफन हुआ, पाइती में अली अकबर का लाशा दफन हुआ। किस तरह सज्जाद ने 18 साल के जवान भाई का लाशा उठाया हो। मगर फिर यहां पे एक बहुत अजीब बात आती है, असगर का लाशा भी यहीं दफन है। दो रिवायतें, एक रिवायत यह है कि हुसैन के पैरों की तरफ अकबर के बराबर असगर दफन है, एक रिवायत है कि नहीं, खुद जरी के अंदर हुसैन के सीने से लगा के असगर को दफन किया। अब इसमें अजीब बात क्या है भाई, असगर को दफन किया या अकबर के बराबर या हुसैन के साथ? अजीब बात यह है कि असगर को तो हुसैन खुद अपने हाथों करबला में दफन कर चुके हैं। क्या आका सज्जाद ने असगर की कब्र को खोद के असगर को बाहर निकाला? जब आज आप जरी पे जाते हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कोई आदमी आपको करबला में यह नहीं कहेगा कि अली असगर की कब्र वहां है, वहां चल के अली असगर की कब्र की जियारत करो, क्योंकि वो जरी के अंदर है। लेकिन करबला की यह रिवायत भी तो है ना, जब हुसैन असगर का नन्ना सा लाशा लेके 7 मरतबा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिजन बे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे ही पढ़ रहे थे और फैसला नहीं कर पा रहे थे कि ये लाशा मां को दिखाया जाए, कोई मां देख सकेगी शशमा है का ये लाशा, या बगैर दिखाए दफन करें? तो आखिर रिवायत यही है कि हुसैन ने असगर को दफन किया। बल्कि उलमा वहां पर एक वजह भी लिखते हैं कि शायद एक वजह यह भी थी कि बाद कत्ले शाह लाशों पे घोड़े दौड़ेंगे, ये शशमाहा अगर घोड़ों की टापों तले आ गया, हाय असगर का नाजुक बदन, हुसैन अपने हाथों दफन कर गए। फिर ये असगर जरी में कैसे पहुंच गए? चाहे पैंती पहुंचे हो, चाहे सीने पे पहुंचे हो, पहुंचे कैसे? हाँ, ये 11 मुहर्रम रियाजुल कुछ रिवायत कर किताब का भी रेफरेंस हूं। 11 मुहर्रम का काफिला तैयार हुआ, एक बार कटे हुए सर जमा हुए, उमर साद ने कटे हुए सर देखे, कहा कि इसमें असगर का सर तो नजर नहीं आ रहा। असगर का सर कहां? पता चला लाशों में सारे लाशें, असगर का लाशा कहीं नहीं। असगर का लाशा क्यों नहीं? फौज यजीद के उन सिपाहियों ने जो आखिर में थे कहा, हाँ हमने इतना देखा कि हुसैन ये लाशा लेके पहले खेमों तक गए, फिर एक टीले के पीछे गए, और फिर वापस जब आए तो खाली हाथ आए। ऐसा लग रहा है कि कर्बला की जमीन में वो टीले के पीछे कहीं पे हुसैन ये लाशा दफन करके आ गए, लेकिन कहाँ दफन किया? कोई निशाने कब्र नहीं। अब ये कैसे ढूंढा जाए? उमर साद ने कहा मुझे असगर का सर भी चाहिए। शिमर कहता है मैं ये सर लेके आता हूं। दुश्मन अहले बैत है लेकिन अहले बैत के तरीके को जानता, कहा मैं ये सर लेके आता हूं, मैं ढूंढ के लाता हूं असगर का लाशा। और शिमर ने कैसे लाशा ढूंढा? हाथ में एक नैजा लिया, टीले के पीछे गया, जमीन में ये नैजा गाड़ता है, ये नैजा निकालता है, फिर थोड़ा आगे गया, नैजा जमीन में गाड़ता है, फिर नैजा निकालता है। हर थोड़ी देर के बाद अब आखिरी बार जो नैजा गाड़ के निकाला, नोके नैजा पर 6 महीने के नन्ने से असगर का पूरा जिस्म नजर आ रहा। शिमर ने असगर का जिस्म एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ से जेब से खंजर निकाला। ऐसा है बाने अजा, असगर का गला जो हुरमला के 3 भाल के तीर से पहले ही छिदा हुआ है, ये शिमर का खंजर चला, असगर का नन्ना सा सर कटा। दरे खेमा पर ये मंजर सकीना देख रही है, पुकार के काम मारा बाप, कर्बला में सब एक बार मारे गए, हाय मेरा असगर भैया आज दोबारा मारा जा रहा। अजरुकुम अल्लाह, परवरदिगार तुझे मासूम अली असगर के इन मसाइब का वास्ता, असगर के चाहने वाले जो आज की मजलिस में गिरिया कर रहे हैं इनके गिरिया का वास्ता, इन्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। खून असगर का वास्ता, शबे जुमा का वास्ता, मेरे आका हुसैन के इस इम्तिहान का वास्ता, साहिबान ईमान की तमाम दुआएं सारी हाजतें असगर के तुफैल में कबूल फरमा। आज की शबे जुमा हमारे तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा, हमारे तमाम बीमारों को, खुसूसन एक बच्ची तथीर फातिमा या फातिमा तथीरा बीमार, इन सबको शिफाए कामिला अता फरमा। दुनिया भर के साहिबान ईमान खुसूसन जो जियारत पर गए हैं, इन सबकी हिफाजत फरमा। ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा।